ऐसे गणपति आचार्य आते हैं, उन्होंने सुना जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी, कैसे जगन्नाथ है, रमा शम ब्रह्मा अमर पते गणेश अर्चितो पदो, गणेश भी जिनकी पूजा करते हैं ऐसे भगवान है। उन्होंने कहा मैं तो गणेश का पुजारी हूँ और मैंने सुना जगन्नाथ के विग्रह के अंदर शिव जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी सभी विराजमान, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चैलेंज करने के लिए पुरी आ गया वो, और जैसे ही पहुंचा जगन्नाथपुरी के पट उसके लिए बंद हो चुके थे। वैसे भगवान दिन में सिर्फ 2 ही घंटे विश्राम करते हैं, भगवान रात को आप जाएंगे ना 10 बजे भी दर्शन देते हैं, हमारे मंदिर की तरह नहीं जैसे 9 बजे सो जाएंगे सुबह 4 बजे उठेंगे, नहीं सुबह 2:30 बजे भी दर्शन चालू हो जाते हैं और हर रोज अलग अलग समय पर चालू होते हैं, किसी दिन 7 बजे तक भगवान सोते रहेंगे उनकी इच्छा। ये जगन्नाथ है जगत के नाम। ऐसे भगवान का पट बंद हो गया गणेश आचार्य के, कहते जाओ दर्शन नहीं देते क्योंकि तुमको क्या नहीं है मुझ पर
विश्वास,
श्रद्धा,
इसलिए दर्शन करने जाए पहली चीज है श्रद्धा विश्वास। रूप गोस्वामी कहते हैं आदो श्रद्धा ततः साधु संग ततः भजन क्रिया। हम लोग भजन तो करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे,
साधु संग भी करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, परंतु हमारे पास में मूल चीज क्या है, श्रद्धा नहीं है, इसीलिए काम नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरे जितने प्रतिशत शरण में आएगा मैं उस पर उतनी प्रतिशत कृपा करता हूँ। ये यथाम माम प्रपद्धंस्ते ताम स्तेम भजामि अहम अहम वर्ताम अनुतंते मनुष्यम पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि इस संसार में मैं जितने परसेंटेज आप मेरी शरण में आओगे विश्वास के साथ मैं आपके कृपा करूँ। आपकी शरण आई 20% तो कृपा मिली 20%, आप शरण में आए 50% तो कृपा मिली 50%, आप शरण में आए 100% तो कृपा मिली
100%।
गणेश आचार्य ने कहा नहीं, ये तो भगवान विग्रह लकड़ी के हैं और उनके लिए पट बंद हो गया, वो इंतजार करता रहा खुलेंगे खुलेंगे खुलेंगे, और जब खुले तो आकर के देखता है कि एक विग्रह है जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, विशाल विग्रह बैठे हैं और बड़ी बड़ी आंखें जिनका एक और नाम है चक्का डोला। क्या नाम है?
चक्का डोला।
डोला मतलब आंखें, चक्के जैसी आंखें है ना, कार के टायर जैसी आंखें बड़ी बड़ी, तो भगवान का एक नाम है चक्का डोला, है ना। ऐसे चक्का डोला भगवान का दर्शन आकर के वो क्या बोलता है, ये कोई भगवान है। बोलते हैं कि जगन्नाथ के अंदर गणेश भी बसते हैं, इनमें गणेश जी कहाँ है, इसके अंदर तो हमारे को गणेश का दर्शन नहीं हो रहा, और कह के बाहर आया। वहां पर एक भक्त खड़े थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ बड़े उदास नजर आते हो। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि शंख के रूप में है पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जो कि प्रलय के जल में भी कभी समाप्त
नहीं होता।
ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 12 घंटे में ब्रह्मा जी 14 मनु की रचना करते हैं और एक मनु 71 चतुर्युगों के अंदर जाता है ना, मतलब लगा लो 1000 हमारे वर्षों के बराबर समाप्त। इतने में ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे समाप्त होते हैं और 12 घंटे रात्रि आती है तो प्रलय जल आ जाता है, प्रलय जल, इसको एक कल्प कहते हैं एक दिन। ऐसे 365 दिन ब्रह्मा जी के और ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं लेकिन उसके बाद उनकी भी मृत्यु आ जाती है। तो ऐसे जो प्रलय जल है इसके अंदर सारे का सारा पृथ्वी जल मग्न हो जाती है परंतु एक स्थान कभी समाप्त नहीं होता, वो कौन सा है, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम, इसलिए विशेष धाम है ये। इसी बात की चर्चा करने के लिए मार्कंड ऋषि आ गए थे। मार्कंड ऋषि ने भगवान से कहा भगवान मुझे आप पर भरोसा नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ कि पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है ब्रह्मा के जल मग्न हो जाने पर भी कभी समाप्त नहीं होता। तो उन्होंने भगवान से, जगन्नाथपुरी में एक आश्रम है मार्कंड ऋषि आश्रम, वहां आकर के भगवान से बोला भगवान मुझे अपनी माया शक्ति का दर्शन कराइए कि प्रलय के जल में भी ये पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम समाप्त क्यों नहीं होता। तो उन्होंने देखा कि भगवान खड़े हैं और सारी जगह पर उन्होंने, भगवान ने कहा तुम अपने नेत्रों को बंद करो, तपस्या मग्न हो जाओ और कुछ ही देर में तुम मेरी प्रलय शक्ति को देखो। देखते देखते क्या हुआ, उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और जब नेत्र खोले तो सामने पूरी पृथ्वी पर क्या था, जल ही जल था, लेकिन एक वृक्ष के नीचे एक पत्ते के ऊपर एक छोटे से ठाकुर जी गोपाल जी तैर रहे थे। आपने देखा है फोटोग्राफ भगवान का तैर, और भगवान अपने मुख से अंगूठा चूस रहे थे ना, बच्चा जैसे अंगूठा चूसता है। तो उन्होंने कहा इतने प्रलय के जल में ये बच्चा किसका है जो अकेला छोड़ दिया माता पिता ने। अब वो बुद्धि से भ्रमित हो गए, योग माया की शक्ति से भूल गए ये कौन है, स्वयं जगन्नाथ है, जगन्नाथ ही तो है जो कि प्रलय के जल के बाद भी समाप्त नहीं होते। लेकिन वो समझे नहीं और जाकर के उस बच्चे से पूछते हैं भाई कौन हो, कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। जब ये पूछने के लिए गए तो बच्चा पता क्या करता है, कहता ऐसे किया, आप मार्कंडेय ऋषि पेट में चले गए, पेट में चले गए, पेट में देखते हैं कि एक गर्भोदकशायी सागर पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनके अनंत रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं और अनंत ब्रह्मांड में हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और हर लोक में बीच में एक पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर एक क्षेत्र है पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी और उसके अंदर जलमग्न पृथ्वी पर एक ऋषि खड़े हैं मार्कंडेय ऋषि और एक बच्चा पत्ते पे तैर रहा है और उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है, ये फिर उसके पास जाते हैं पूछते तुम्हारे माता पिता कौन है, वो फिर करता है फिर पेट में चले जाते हैं। ऐसे 7 बार 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 भगवान के पेट में जाकर के मार्कंडेय जी समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है प्रभु, ये कौन सी लीला दिखा रहे हैं। तो भगवान फिर करते हैं एक बार बाहर करते हैं तो फिर पुनः 7वीं बार जब वो आते हैं देखते हैं जगन्नाथपुरी धाम एज इट इज वर्तमान है और वहां पर पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण खड़े हुए जगन्नाथ स्वामी है ना, तब वो समझ जाते हैं क्या है, जगन्नाथ जी की इच्छा थी, जगन्नाथ जी ने दिखाया कि प्रलय आने पर भी जगन्नाथपुरी धाम जो है ना समाप्त नहीं। तो ऐसे गणेश आचार्य को भगवान पर भरोसा नहीं हुआ, बाहर आया कहता है ये सब तो कहने की बातें हैं, लिखी लिखाई किताबों की बातें पर हमको भरोसा नहीं होता, अगर जगन्नाथ सच में जगत के नाथ है, अगर इनके अंदर रमा ब्रह्मा शिवा गणेश सभी इनके अंदर समाहित है, जैसे भगवान ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा मेरी छाती में है, शिव मेरे हृदय में है, सारे के सारे दर्शन मैंने उनको करा दिए 33 करोड़ देवी देवता के। तो जगन्नाथपुरी में आकर के जब वो बाहर जा रहे थे पुजारी की बात सुनकर जब पुनः लौट करके आए कि अगर तुम सच में जगत के नाथ हो तो मुझे गणेश का दर्शन कराओ, लौट करके आए तो देखा क्या, भगवान जगन्नाथ की सूंड निकल आई है। और आज भी जब रथ यात्रा होती है उससे 15 दिन पहले भगवान का दर्शन बंद किया जाता है, तो जब भगवान को स्नान मंडप के ऊपर स्नान कराते हैं तो स्नान की वेदी के ऊपर क्या करते हैं, भगवान को गजा वेश दिया जाता है, गजवेश गज का वेश दिया जाता है कि गणपति आचार्य के लिए भगवान ने गणेश का रूप धारण किया।
जी वेदी पे स्नान करते हैं बहुत बाहर जो है ऊपर जाके
वेदी पे स्नान कराते हैं,
क्यों कराते हैं स्नान,
स्नान कराते हैं भगवान का वो नियम है,
पहले स्नान यात्रा होती है
तो भगवान को इस प्रकार से स्नान कराया जाता है। तो ये भगवान की बड़ी विशेष लीला है कि स्थान पे रमा शम्मा ब्रह्मा सभी सभी भगवान के दर्शन करते हैं ना, और कहते हैं यहाँ पर लिखा है रथारुण गच्छन पथि मिलिता भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपाकर्ण्य सादे दया सिंधु बंधु सकल जगत सिंधु सुताय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नवातु। फिर से बोलिए
जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नवातु।
जगत के स्वामी आप रथ पे आरूढ़ होकर के जाते हैं कहाँ, रथ यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, रथ के ऊपर आज हमने सुबह चर्चा की थी कि भगवान कैसे द्वारका मंदिर से कहाँ चले जाते हैं,
गुंडीचा
मंदिर चले जाते हैं और उनकी रानी है गुंडीचा रानी, उनके वो वृंदावन का आस्वादन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण सुभद्रा बलदेव के संग में कहाँ चले जाते हैं, गुंडीचा मंदिर जाते हैं जिसको रथ यात्रा कहते हैं। तो ऐसी रथ यात्रा भगवान कभी कभी अपने भक्तों के लिए रोक भी देते हैं, चलती रथ यात्रा भगवान के भक्तों के लिए रुक जाती है। एक भक्त थे जिनका नाम था साल बेग, है ना, मुस्लिम थे साल बेग। तो ऐसे साल बेग जो थे मुस्लिम सरकार की सेना में उनके पिता कार्य करते थे, क्षत्रिय थे, सोल्जर थे, और उनके मृत हो जाने के बाद में साल बेग जो थे वो भगवान के भक्त बने क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो भगवान जगन्नाथ की भक्त थी। तो ऐसे साल बेग जो थे उनको भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी, है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके पिता जब रथ में लड़ाई होती है उसमें जब वो मारे गए तो लहू लुहान जब वो पड़े थे तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं कैसे आपकी रक्षा कर सकता हूँ क्योंकि आपने मुझे क्षत्रिय बनाया लेकिन माँ ने मुझे भक्त भी बनाया, इधर तो मैं सेना के लिए लड़ाई भी करता हूँ लेकिन इधर मैं सदा जगन्नाथ के नाम का कीर्तन भी करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे भक्ति का बीज दिया और मेरे पिता ने मुझे क्षत्रिय होने का बीज प्रदान किया। ऐसे साल बेग के पिता को जब उन्होंने लहू लुहान देखा तो क्या कहते हैं, साल बेग बोले कि पिताजी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, उन्होंने कहा तुम जाओ जगन्नाथपुरी और वहां से प्रसाद लेके आओ, तुम्हारी माँ कहती है जगन्नाथ जो है वो सब कुछ कर सकते हैं, वो जो ऐसी परिस्थिति ला दी कि पति को भी भक्त बनाना पड़ा। तो इसे साल बेग जब पहुंचते जगन्नाथपुरी तो उनको मालूम नहीं था कि भगवान जगन्नाथ कहाँ मिलेंगे, कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया था। तो जब वो वहां पहुंचे तो रथ यात्रा पे रथ आरूढ़ गच्छति, रथ पे आरूढ़ होकर के भगवान जगन्नाथ जा रहे थे, और एकदम से क्या हुआ, ऐसी स्थिति आई,
जाने दीजिए सर,
जाइए ना,
आपको डिस्टर्ब कर दिया हूँ ना,
कोई बात, कलयुग का लक्षण है डिस्टर्बेंस,
अड़चने तो आती है।
प्रभु जी माता जी को बैठाइए ना, बैठी बैठी, हाँ बैठी ना। तो इस प्रकार से हुआ, जब सालबेग वहाँ पहुंचे तो एक स्थान है जिसको बोला जाता है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, गार्डन को पार्क गार्डन या फिर क्या बोलते हैं बगीचा, तो जगन्नाथ वल्लभ बगीचा नाम का एक स्थान है। वहाँ पर जगन्नाथ वल्लभ बगीचे के बाहर जगन्नाथ जी का रथ आकर के रुक गया और वो चलने को तैयार नहीं था। सारे के सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग खींच रहे थे रथ को, लेकिन रथ चल नहीं रहा था। तो पंडा पुजारी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ का रथ एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। भगवान किसका इंतजार कर रहे थे?
सालबेग
का, क्योंकि सालबेग की माँ ने उसके हृदय में इतना जगन्नाथ प्रेम भरा था, वो बोला मेरे पिता की कोई रक्षा कर सकता है तो कौन कर सकता है,
जगन्नाथ।
तो इसी इच्छा से जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए सालबेग पहुंचे। लेकिन अगर भगवान इग्नोरेंट होते, कृपालु नहीं होते, दीनहीन पर कृपा करने वाले नहीं होते, तो भगवान अपना रथ लेके निकल जाते। परंतु भगवान ने कहा सालबेग को आने में लेट हो रहा है, अगर मैं निकल गया तो सालबेग मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गुंडीचा मंदिर में किसी मुस्लिम को आने नहीं दिया जाएगा और इधर भी आने नहीं दिया जाएगा। तो इससे मिलने का समय क्या है, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन जो आता है बीच में, इस बड़ा डंडा रोड पे इधर से इधर जाने में रस्ते में रुकना पड़ेगा। रस्ते में जगन्नाथ जी का रथ रुक गया और सालबेग आया। सभी पंडा पुजारी परेशान थे, क्या हुआ? तो सालबेग भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जैसे ही रथ के ऊपर आरूढ़ हुआ और जगन्नाथ जी के कान में जाके कहा, हे जगन्नाथ मेरे पिता की रक्षा करिए, जगन्नाथ जी के गर्दन से एक माला गिरी जो कि सालबेग के हाथों में आई और तुरंत रथ
चल। जय जगन्नाथ।
वैसे सोचिए, एक मुस्लिम भक्त के लिए भी भगवान इंतजार कर सकते हैं, तो क्या आपके लिए इंतजार नहीं कर रहे होंगे? एक पुरुषोत्तम, एक ट्रेन भरकर भक्त चले आ रहे हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, इंतजार कर रहे हैं भगवान भी कि कब आएंगे मेरे भक्त सारे, है ना। तो इसी प्रेम से हमको जाना चाहिए। तो जगन्नाथ मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भगवान के सीधे हाथ पर लक्ष्मी जी हैं और उल्टे हाथ पर पार्वती देवी हैं जिनका नाम है विमला देवी, है ना, विमला देवी।
ऑल्टर में, मंदिर के बाहर मंदिर है,
ऑल्टर से बाहर एक अलग
मंदिर है दोनों ना,
मंदिर की जो बाहर से एक्स्ट्रा परिक्रमा होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक यज्ञशाला है, उसके आगे विमला देवी मंदिर और इधर लक्ष्मी देवी मंदिर,
राइट में लक्ष्मी जी,
राइट में लक्ष्मी, लेफ्ट में पार्वती। तो जो पार्वती आप कहेंगे, विष्णु मंदिर में पार्वती का क्या काम, जगन्नाथ मंदिर में पार्वती का क्या काम? तो एक बार ये लीला आती है कि आज जो जगन्नाथ थे उन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बड़ा फेमस है, आप लोगों ने खाया होगा, है ना, कौन सा, खाजा, जिसको खाना पड़ता नहीं है, सामने आते ही मतलब होता है खाजा, है ना, इंतजार मत कर खाजा। महाप्रसाद को इंतजार नहीं कराना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसे हाथ में आए खाजा, है ना। इसीलिए वहाँ जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी भी नहीं रखता। एक बार मैं एकादशी के दिन गया तो वहाँ पर एक पुजारी मेरे को कहता है ये लीजिए प्रसाद, मैंने कहा क्या करना है, बोले इसका नाम है खाजा। मैं पहली बार गया था, मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने मेरे मुंह में डाल दिया खाजा, मैं खा गया। तो मुझे याद है रास्ता एकादशी था, तो मैंने कहा आपने मेरा एकादशी तोड़वा दिया पंडित जी। तो उन्होंने कहा आपने, पंडित जी आपने हमारा एकादशी तोड़वा दिया। तो मैंने कहा, वो बोलते हैं देखिए यहाँ पर एकादशी नहीं लगती है, एकादशी को मंदिर के पीछे एकादशी देवी को ताला डाल करके ताला लगा रखा है ऐसे। तो आप देखेंगे छोटा सा मंदिर है, उसमें जंजीर डालकर एकादशी को बंद किया है कि यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, जगन्नाथ स्वामी के आगे सारे रूल बेकार हो जाते हैं।
अभी तो तुम गए थे,
कोई नहीं, भटकना ही लक्षण है कल।
इसी में कथा करती मुझे ने तो।
इस प्रकार से वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बड़ा फेमस है। आनंद बाजार में सुबह सुबह बहुत सारा प्रसाद मिलता है, एकादशी देवी बंद है। भगवान जगन्नाथ के बिल्कुल पीछे के विग्रह पर वहाँ पर एक नरसिंह भगवान का विग्रह है, बहुत ही विशाल नरसिंह भगवान। ऐसे भगवान आपने मायापुर में भी नहीं देखे, मायापुर के जो नरसिंह है उनसे भी विशाल नरसिंह भगवान है, और बहुत उनकी सीढ़ियां बड़ी खतरनाक है, चढ़ते चढ़ते लोग गिर भी जाते कभी कभी, तो ध्यान से माताओं को चढ़ना होता धीरे धीरे। तो उसमें जो उल्टे हाथ पे पार्वती जी क्यों बनाई है, क्योंकि एक बार भगवान का महाप्रसाद नारद मुनि ने चख लिया, नारद मुनि ने चखा, जगन्नाथ जी प्रसाद पा रहे थे, नारद मुनि आए बोले प्रभु अपना महाप्रसाद दे दीजिए। तो भगवान ने अपने मुख से बोले मैं सब कुछ खा चुका हूँ लेकिन एक तिनका लगा है मेरे मुंह पे, वो आप ले लो। नारद मुनि ने उस तिनके को थोड़ा सा मुंह में डाला तो आधा तिनका अंदर गया, आधा यहाँ लगा था। आधा जिह्वा पे स्पर्श मात्र होते ही नारद मुनि क्या हो गए, रस में नाचने लग गए। क्या बोलने लगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इतना आनंद मग्न होकर के नारद मुनि नाच रहे थे तो वहीं पर शिव जी आ गए। शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो है चतुर कुमार, और फिर आते हैं नारद मुनि और उसके बाद में आते हैं रुद्र मतलब शिव जी। ब्रह्मा जी के जो नेत्र से जो आईब्रोज हैं इसके बीच में से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है ना, नील लोहित है। ब्रह्मा जी नीले रंग के भगवान के शव, शिव जी प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के नेत्रों के आईब्रोज के बीच में से। तो ऐसे ब्रह्मा जी के जो पुत्र है शिव जी वो नारद से कहते हैं अरे भाई तुम तो मेरे भाई हो, बड़े भाई होकर के आनंद मग्न हो और अब छोटे भाई को बताने रहे, इतना आनंद किस चीज का है, रोज ही आते जाते हो लेकिन आज बड़े एक्स्ट्रा आनंद में हो, कौन सी एक्सटेसी में नाच रहे हो। तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, ये भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद का स्पर्श मात्रेण, स्पर्श मात्र होते ही मेरे पूरे शरीर में रोमांच कंपराशु तरंग भाजो, इस तरंग भाज रही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ पैर रखूं कहाँ जाऊं। ऐसे पंखा बंद कर दीजिए माताओं को,
अच्छा
तो ऐसे जगन्नाथ भगवान जो थे उनका महाप्रसाद नारद मुनि ने क्या किया, जो तिनका लगा था वो शिव जी को प्रदान कर दिया। शिव जी ने वो आधे तिनके का आधा तिनका खाया तो शिव जी भी क्या करने लग गए, जय जगन्नाथ,
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
अब शिव जी भी ऐसे करने लग गए। अभी पार्वती मैया वहां से आई, कहती है अरे भोलेनाथ आज ऐसा क्या एक्स्ट्रा क्रेडिट मिला है आपको, इतना नाच कूद कर रहे हो, कौन सी शादी पार्टी बना कर आए हो। कहा कुछ नहीं है, नारद जी के द्वारा आज मुझे क्या मिला है, महाप्रसाद, महाप्रसाद के स्पर्श मात्र से मेरा क्या हो गया, ये रोमांच कंप्रश हो रहा है। उन्होंने कहा लेकिन मेरे लिए, कहा आपके लिए तो मेरे पास नहीं है, उसे तो कौन दे सकता है, उसे तो स्वयं जगन्नाथ जी दे सकते हैं। अब पार्वती मैया जगन्नाथ जी के पास पहुंची और कहती है जगन्नाथ, हे कृष्ण आप मुझे क्या प्रदान करें, ये महाप्रसाद मुझे भी दें जिससे मैं भी आनंद विभोर हो सकूं। तो जगन्नाथ जी कहते हैं हे पार्वती मैं तो अभी प्रसाद पा चुका हूँ, मैंने नारद जी को भी दिया, तुम तक नहीं पहुंचा, ओ आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, है ना। तो जब इस प्रकार से बोला तो पार्वती जी रुष्ट हो गए। पार्वती जी कहती हैं जगन्नाथ जी आज आपने मेरे साथ क्या किया, बुरा किया, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो सभी भक्तों पर कृपा सिंधु हैं, और आपके जैसा भी अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कौन, हम कहाँ जाएंगे, है ना। कहते हैं ना दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अगर आप भी अपने हाथ से हमारी डोरी छोड़ दोगे तो हमारा रथ तो गिर ही जाएगा इस संसार। तो ऐसे जगन्नाथ आप क्या हमको प्रसाद भी नहीं दे सकते। तो जगन्नाथ जी कह देते हैं अपने मुंह से, कहते चिंता मत करो मैया, कलयुग में जो कुछ भी खाऊंगा वो पहले आपको आएगा, उसके बाद लक्ष्मी भक्त अन्न शिव ब्रह्मा आदि को बाद में मिलेगा, पहले तुमको मिलेगा। उसी दिन से ब्रह्मा जी ने लाकर के पार्वती जी को स्थापित किया और उनका विमला देवी नाम मतलब पार्वती जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी का जब भोग लगता है उसके बाद में पहला स्थान पार्वती जी के लिए जाता है, पार्वती जी जब ग्रहण कर लेती हैं फिर वो भक्तों में वितरित होता है, ताकि पार्वती जी को उन्होंने वचन दिया था कि कलयुग में जब भी खाऊंगा पहले आपको प्रदान करूंगा, इसलिए विमला देवी मंदिर उल्टे हाथ पर है, उनका भोग लगाया जाता है। तो जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे जो कि हमारे महान आचार्य है ना, परंपरा में जानते हैं ना आप लोग भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जब मजिस्ट्रेट थे तो वो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जो है ना अध्यक्षता किया करते थे, प्रेसिडेंट थे उस मंदिर के। तो वहीं पर उसी रोड पर एक चैतन्य मठ है, जिस चैतन्य मठ में भक्ति विनोद ठाकुर जी का क्या था घर था, और उसी घर में उनके घर में वो एक चाहते थे कोई ऐसा भक्त बने जो कि भगवान जगन्नाथ का प्रचार पूरे विश्व में करे। तो ऐसे भक्त बच्चे की अभिलाषा करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर सदा किसके पास जाया करते थे, विमला देवी। तो जिनके घर में पुत्र परिजन नहीं होते हैं वो पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए विमला देवी की प्रार्थना करते हैं, पार्वती मैया कृपा करती हैं और सबके घर में भक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। तो विमला देवी से प्रार्थना करते थे और कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और जब पुत्र हुआ तो उसका नाम उन्होंने विमला देवी के ऊपर रखा, क्या नाम रखा, विमल प्रसाद। क्या नाम रखा,
विमल प्रसाद।
कौन थे विमल प्रसाद,
भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बाद में बने। इसे विमल प्रसाद के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ जी का रथ चैतन्य मठ के आगे आके रुक जाता है, और जब भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि हेड थे वो ऊपर चढ़कर भगवान जगन्नाथ को माला पहनाते हैं और अपने बच्चे का जो, और ऐसे होता है ना, बच्चा जब छोटा होता है तो उसको जगन्नाथ जी के विग्रह से स्पर्श कराया जाता है, और जैसे ही स्पर्श कराया तो क्या हुआ, तुरंत ऊपर से माला निकल के विमल प्रसाद के गले में गिर गई, है ना। तो ऐसा तभी सबने समझ लिया था, ये और कोई नहीं, ये भगवान का साक्षात महाप्रसाद हमको प्राप्त हुआ है। इसीलिए वो इतने विशेष भक्त बनते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, क्योंकि वो जगन्नाथ और विमला देवी की कृपा से श्री भक्ति विनोद ठाकुर को प्राप्त हुए थे। तो हम भी ऐसे जगन्नाथ के वहां पर जाएंगे तो हमको अनंत कोटि लीलाएं सुनने के लिए महाराज आदियों से मिलेंगे, और वहां पर बहुत सारी लीलाएं हुई है। चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में अपने जो है ना 18 साल गंभीरा में निकाले हैं। वहीं पर हरिदास ठाकुर जो कि नाम के आचार्य हैं, वो सिद्ध बकुल वृक्ष के नीचे बैठकर ही, एक पेड़ है जिसमें जड़ें समाप्त हो चुकी है लेकिन फिर भी बढ़ रहा है ऐसा पेड़, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लगाया गया था। एक बार हरिदास ठाकुर धूप में बैठ करके जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भाई कहते हैं, हे हरिदास, तुम इतने महान भक्त होकर के यहाँ धूप में बैठ करके जप क्यों करते हो, किसी पेड़ की छाव में बैठ जाओ। तो कहते हैं कि छाव की मुझे आवश्यकता नहीं, कहा कोई भजन कुटीर बना लो, कहा मुझे किसी भजन कुटीर की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भजन कुटीर बनाऊंगा या किसी पेड़ के नीचे स्थान बनाऊंगा तो मेरी उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, मुझे लगेगा ये स्थान मेरा है, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, गाजियाबाद में एक मकान हो, साहिबाबाद में एक मकान हो, दिल्ली में एक मकान हो, है ना, उसमें एक और मकान हो, इसके ऊपर एक और फ्लैट हो जाए, बच्चे के दो लड़कों का दो मकान हो जाए, मेरा हो जाए, है ना। लेकिन ये इच्छा पता हमारे को कहाँ से आई है, चूहों से आई है। चूहा होता है ना, आप कभी उसका देखेंगे, बिल होता है चूहे का, एक बिल, चूहे के बिल में आगे दो रूम होते हैं, एक ड्राइंग रूम होता है उसमें सोफा होता है, पीछे दो छोटे रूम होते हैं, इधर से एंट्री गेट होता है और इधर से एग्जिट गेट होता है, इधर से अंदर जाओ इधर से बाहर आओ, नहीं देखा आपने, सांप का बिल सुना होगा, लेकिन सांप ने आज तक कभी बिल ही नहीं बनाया, सांप हमेशा चूहे के बिल में ही रहता है, चूहा बिल बनाता है और सांप उसके अंदर प्रवेश करता है और दूसरी तरफ वो अपना फन घुसाता है, इधर से पूंछ घुसाता है, चूहे को लगता है सांप आ गया, चूहा इधर को भागता है, इधर मुंह खोल के बैठा होता है, खप से खा जाता है उसको, ऐसे करके फिर वो पूरा सांप का बिल बन जाता है। ऐसा सांप से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे ऊपर भी काल रूपी सर्प सदा विराजमान है और वो फन लगा करके बैठा है, हम ड्राइंग रूम बेडरूम बनाते रह जाएंगे, जिस दिन गेट से बाहर निकलेंगे वो सांप हमें गप करके खा जाएगा। तो हमें सदा ऐसे काल रूपी सर्प से बचना चाहिए। तो ऐसे हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं महाप्रभु, आप कहाँ मुझे फंसा रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ, भगवान चैतन्य महाप्रभु के वो होते हैं ना, दांतों में फंस जाता है तो एक लकड़ी से सफाई करते हैं, है ना, वो लकड़ी ऐसे दांत में प्रसाद पाने के बाद साफ करने वाली एक लकड़ी थी, नीम की लकड़ी, उससे दातून करते करते उन्होंने दांत से अन्न निकालते निकालते कहा, मुझे लगता है तुम्हारे लिए एक वृक्ष होना ही चाहिए, और वो लकड़ी को वहां ऐसे गाड़ दिया, जैसे गाड़ा देखते देखते वो विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो वृक्ष चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लगाया गया है, इसलिए 500 साल हो जाने पे भी जड़ समाप्त हो गए लेकिन वृक्ष समाप्त
नहीं हुआ।
तो ऐसा बहुत सारे लीला स्थान हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका मूल है जगन्नाथ के प्रति क्या रहनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ अनेकों लीलाएं करते हैं, जैसे एक बार भगवान जगन्नाथ के मन में आया कि चलो मैं काम करता हूँ, जगन्नाथ को बड़ा अच्छा लगता है खाना, क्या, जैक फ्रूट क्या बोलते हैं, कटहल भगवान को बहुत अच्छा लगता है, तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन जगन्नाथ को बुलाते हैं ना, प्रसाद में कटहल की सब्जी खिलाई जाती है, कटहल खिलाया जाता है। तो जगन्नाथ के एक भक्त थे और वो महान भक्त थे, उनके प्रति राजा भी बड़ा समर्पित था, ऐसे भक्त के पास में जगन्नाथ स्वप्न में आके कहते हैं, मेरा बड़ा मन है कटहल खाने का, कहा प्रभु आप जगत के ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, खाने का मन है जाओ खा लो, मैं क्या कर सकता हूँ। बोले नहीं मैं चाहता हूँ चुरा के खाया जाए। तो बोले प्रभु आप चुराने की शिक्षा आप दे रहे, कहा हाँ, जब से वृंदावन से आया हूँ तब से चुराने की आदत ही छूट गई है, वृंदावन में तो गोपियों के घरों में घुस घुस के चुराया करता था, वृंदावन में तो गोपियों के घर में बहुत चुराया करता था, लेकिन माता जी को वॉमिटिंग आ रहा है,
जाओगे ना,
ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ।
जब आप वृंदावन में थे तो बहुत ही चुरा चुरा के खाया करता था, लेकिन जब से कलयुग में इस जगन्नाथ पुरी में आया हूँ, इस पुरी धाम में मेरा चुराना रुक गया है और चुराए बिना मजा नहीं आता। आपने भी अनुभव किया होगा, खरीद के खाने से ज्यादा फ्री का मिल जाए तो बहुत मजा आता है। अनुभव नहीं किया
यही है,
तो आपको जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ अनुभव करवा सकते हैं। तो जगन्नाथ जो थे उन्होंने भक्त को कहा ठीक है हम दोनों चलेंगे, और जगन्नाथ वल्लभ वो एक राजा जो इंद्रदुम्न राजा का गार्डन था उसमें बड़े बड़े कटहल के वृक्ष थे। कहा वहां तो चौकीदार है। कहा चौकीदार क्या मुझसे बड़ा है? कहा नहीं प्रभु आप तो सबसे बड़े। कहा फिर क्यों निर्भय नहीं होते हो? भक्त को कैसा होना चाहिए?
निर्भय,
भय नहीं, सिपाही रहित। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी ने उनका नाम रखा अभय,
भय
से दूर रहने वाले। भगवान जो है हमें भय से दूर करते हैं, तो ऐसे अभय जो है वो भगवान देना प्रदान करते हैं अपने भक्त को साथ ले जाकर के। जगन्नाथ वल्लभ जो गार्डन नाम पड़ गया है उस कटहल के बगीचे में घुस गए। रात्रि का समय था, भगवान ने उस भक्त से कहा कि आप एक काम करो आप ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर से कटहल फेंक के नीचे दो, मैं नीचे कैच करूँगा। तो भक्त बोला कि प्रभु आप सच में नीचे कैच करेंगे? मैं धीरे धीरे उतार लाऊ। कहा इतना बड़ा कटहल कैसे उतारोगे? जैसे ही भगवान ऊपर को चढ़ने लगा भक्त और सर सर की आवाज आई, चौकीदार आ गया माली, बोलता है हमारे यहाँ पर हे इतने बड़े ब्राह्मण हो के आप यहाँ चोरी करते हैं, आपका तो राजा बड़ा सम्मान करते हैं, आपकी कविताएं पढ़ी जाती हैं और आप यहाँ चोरी करने के लिए आए? तो उन्होंने कहा कि तुरंत चलिए राजा के पास। कहा नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही गलती से आ गया था यहाँ पर गार्डन में, मैं तो क्या रास्ता भूल गया था। अभी वो ढूंढ रहे थे कि जगन्नाथ जी कहाँ चले गए। जगन्नाथ बोले मैं पेड़ के पीछे छुप गया था, चौकीदार से मुझे डर लगता है। ऐसे करके उस भक्त को बोले। और फिर थोड़ी देर बाद क्या किए जगन्नाथ, जब वो माली चला गया तो फिर दोबारा पुनः प्रवेश करा दिए और इस बार बोले कि अब तुम ऊपर चढ़ के और ऊपर चढ़ो और धीरे धीरे चढ़ो, आवाज मत करना, चोरी करने का शिक्षा भी देते कैसे करनी चाहिए। पहले हम जब जाया करते थे वृंदावन में तो हम पाँव को दबा दबा के चलते थे, किसी गोपी को मालूम नहीं पड़ता था हम उसी के घर पे अटैक करने वाले हैं, लेकिन तुम ऐसे हो, तुमने तो पहली बार में ही फंसा दिया, अभी तुम्हें मुझसे बहुत ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। ऐसे कह के भक्त को बहुत ही उत्साहित करके ऊपर चढ़ा दिए और बोले हाँ हाँ वो वाला बड़ा वाला आज दोनों मिलके प्रसाद खाएंगे। और भक्त ने जब बड़ा वाला वो जैक फ्रूट वो कटहल निकाल करके लिया, बोले फेंक दो मैं कैच करूंगा। बोले आपके तो हाथ ही नहीं है, कैच कैसे करोगे? तो वो बोले नहीं मेरे हाथ तो, मैं लगता है क्या मेरे हाथ नहीं है? बोले हाँ प्रभु आपके हाथ तो आ जाएंगे, तुम फेंको मैं कैच करूंगा। वो भक्त ने जैसे ही फेंका तो क्या हुआ, जगन्नाथ जी वहां से अदृश्य हो गए। अदृश्य हुए तो नीचे जब वो गिरा धम करके आवाज आई तो जब इतनी जोर से चौकीदार आया, बोला हे ब्राह्मण देव ऊपर चढ़कर चोरी, अभी आए तो बोले दिग भ्रमित हो गया था, अभी ये क्या भ्रमित होकर इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? तो बोले अभी तो ये साक्षात पता चल गया चोरी करने के लिए आया, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। राजा के सामने पेश किया गया, राजा बोला अरे प्रभु आप इतने बड़े ब्राह्मण है, हाँ बोलते पूरा गार्डन आपके नाम लिख देता, ये एक कटहल के लिए इतना ऊंचा चढ़ने की क्या आवश्यकता है? बोले इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ये जगन्नाथ की इच्छा थी। तब जब उन्होंने ये बात सारी सुनाई तो राजा को विश्वास हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त थे, भगवान की लीला उन्होंने उनको सुनाई कि भगवान ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा। और उस दिन से राजा ने कहा अगर ऐसी इच्छा है तो रोज जगन्नाथ जी को क्या लगेगा, कटहल का भोग लगेगा। तब से जगन्नाथ जी को कटहल का भोग। तो ऐसे जगन्नाथ ने बहुत सारे भक्तों के लिए ऐसी अनेकों लीलाएं करी हैं, है ना? और लीला सुनना चाहते हैं आप? जगन्नाथ जी के एक भक्त थे जिनका नाम था बंधु मोहंती, है ना? बंधु मोहंती, बंधु मतलब मित्र, मोहंती मतलब जिससे प्रेम किया जाता है। तो बंधु मोहंती जो थे वो दूर रहते थे पुरी से और वो अकेले बहुत ही गरीब थे, भिक्षाटन करके उनका घर परिवार चलता था। ऐसे बंधु मोहंती अकेले अकेले घर में भिक्षा मांग के लाते थे, उनके तीन बच्चे थे और दोनों पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे। ऐसे बंधु मोहंती एक दिन अपनी पत्नी से कहते हैं क्या बात है आज बहुत दुखी हो? कहा आप कैसी बात करते हैं, दुखी ना हो, एक ग्रस्त परिवार में अगर 7 दिन तक भोजन ना मिले बच्चे को तो माँ दुखी नहीं होगी क्या? मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया है, मैं दुखी हूँ। तो कहते हैं कि चिंता क्यों करती हो, सबके बंधु कौन है, जगन्नाथ, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। बोलिए मेरे साथ,
हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है।
हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है।
हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है।
हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है।
हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है।
ऐसा बात बोले तो उनकी पत्नी बोली, बात तो आप बड़ी बड़ी करते हो, अच्छी है, लेकिन खाने के लिए तो इसमें चाहिए ना, बातों से तो पेट नहीं भरेगा, तो कुछ तो लाइए प्रसाद। तो बोले कि चलो देखता हूँ, सोचता हूँ। बोले सोचना कुछ नहीं, आप कहते थे ना आपका एक मित्र है जो पुरी में रहता है, बड़ा आदमी है, बहुत बड़े महल का राजा है, वहीं ले चलिए। अब पत्नी को क्या पता कौन जगन्नाथ, कौन भगवान, क्या। अब ये बोला कैसे ले जाऊँ, क्या बताऊँ इनको कि वो तो भगवान है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे बंधु हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे मित्र हैं। चलो पत्नी परिवार बच्चों को लेकर चला गया। पहुँचा पुरी में तो इधर उधर घुमा रहा है, उनको मंदिर में नहीं ले जा रहा है, बस यहीं रहते थे पहले तो यहीं थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए, पहले तो इधर थे, ऐसे करके रास्ता घुमा रहा है। रात्रि हो गई, चलते चलते रात हो गई, तो जगन्नाथ मंदिर के बाहर ही, अब अंदर तो कोई जाने नहीं देगा, गरीब फटे हाल कौन जाने देगा। जैसे सुदामा को कृष्ण के द्वारका में प्रवेश नहीं करने दिया, वो भी मित्र थे, ऐसी बंधु मोहंती कलयुग में भगवान जगन्नाथ के मित्र थे, रोज भगवान को मित्र के सखा के भाव में भगवान का भजन करते थे। बाहर ही लेट गए अपने परिवार को लेकर के। रात को जब 2 बज गए, पत्नी बच्चे जो थे ना तड़पने लगे भूख से, तो बच्चों को क्या किया, जगन्नाथपुरी में क्या होता है, जगन्नाथ जी का जो अन्न प्रसाद है चावल, वो नालियों में बहाता है, नालियों में बहने के बाद में कुछ भक्त वहाँ से नाली में से वो जगन्नाथ जी का प्रसाद निकालते हैं, उसको सुखाते हैं, सुखाकर उसके टुकड़े करते हैं और फिर आपको भोग के रूप में बेचते हैं, है ना, आप ही लाते हैं और कहते क्या है, ये द्वादशी का क्या है महाप्रसाद, परायण के लिए महाप्रसाद है। तो वो उन्होंने क्या किया, चावल के कुछ तिनके उठा के बच्चों को खिला दिए, लेकिन उसमें बहुत ढूंढने पर तिनका भी नहीं मिला, खाली चावल के माड़ का पानी पिलाकर सुला दिया। ऐसी अवस्था में बच्चों के पेट में दर्द हो रहा था, तो कहता है रस्सी बांध लो पेट के ऊपर, पेट को बांधने से भूख कम लगेगी, और बांध के सुला दिया। जगन्नाथ जी कभी देख सकते हैं कि एक भक्त जगन्नाथ पुरी में आए और भूखा रह जाए। आज भी जगन्नाथ जी पुरी में ऐसा हाल है, 200 मटकों का भोग लगता है, और इस प्रकार से तकरीबन 5,000 लोगों का भोग बनेगा, लेकिन अगर 5,00,000 भी आएंगे ना तो कोई जगन्नाथपुरी से भूखा नहीं जाता। तो जगन्नाथ जी ने रात को 2 बजे क्या किया, कहा आ गया मेरा भक्त, बैठा है गेट के बाहर, खाने को कुछ है नहीं, तो रात्रि को भोग लगाया जाता है। तो भगवान ने क्या किया, महाप्रसाद के किचन में गए, अपनी थाली जिसमें वो खुद खाते हैं, बड़ा इतना बड़ा थाल है, उसमें छोटे छोटे बर्तन हैं, उन सब में सारा महाप्रसाद रखा, एक बूढ़े का वेश बनाया, और भगवान अपने मंदिर के गर्भगृह से निकलकर गेट पर आए और बंधु मोहंती को कहते हैं, बंधु मोहंती उठो उठो, देखो कौन आया है, तुम्हारा मित्र आया है। तो बोले कौन है आप, कहा तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे लिए प्रसाद भिजवाया है, मैं उनका चौकीदार हूँ। पत्नी कहती है अच्छा आपके मित्र को मालूम पड़ गया कि हम आए हैं, चलो अभी खा लेते हैं, सुबह मिलेंगे तो कुछ पैसा भी मिल जाएगा, और खा करके सो जाते हैं। इतने भूखे थे नींद आ जाती है तुरंत, 10 दिन से सोए नहीं थे, यात्रा की थकान थी, वो जो परात था उसको उल्टा करके वहीं सो गए, उसी के ऊपर सो गए, अभी ऐसे तकिया बना के सो रहे हैं। सुबह सुबह क्या हुआ, जब पुजारी लोग 4:30 मंगला आरती के लिए भोग लगाने के लिए थाल ढूंढ रहे, थाल नहीं मिला, सोने का थाल है मिल ही नहीं रहा, तुमने देखा वहाँ पे ताला डाला जाता है, कोई छू नहीं सकता है भगवान की चीज, किसने छुआ, ताला भी ऐसे ही लगा हुआ है, कोई ताला भी नहीं टूटा, कौन ले गया। अब जब स्वयं ही रक्षा करने वाले खुद ही निकाल करके दे आएंगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा। तो सोने का बर्तन मिल नहीं रहा था, ढूंढते सभी लोग आए, टॉर्च लाइट लेकर के ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे जब रोड पर लाइट मारी तो देखा कि सूरज की रोशनी और टॉर्च की रोशनी से चमचमा करके एक रोशनी निकल रही है, रिफ्लेक्शन। तो जब उन्होंने देखा कि परात के अंदर से रिफ्लेक्शन, बोले अरे ये तो सोने की थाली है, पकड़ो इसको, उठा करके जेल में बंद करो, चोरी करता है और इतना होशियार है कि ताला दोबारा लगा भी देता है, और उठा करके उसको काल कोठरी में बंद कर देता है ना। अभी बंधु मोहंती की पिटाई हो रही है, तो उनकी पत्नी कह रही है आए थे यहाँ पर किस लिए, तुम्हारे मित्र से मिलने, कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है कि तुम्हें पिटाई की जा रही है, तुम्हें मारा जा रहा है। अब ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, जा तो रहे बड़े आनंद में, लेकिन हो सकता है कि किसी रूम में आपको भेज दिया जाए, जिस रूम में आपको बोला जाए एक ही व्यक्ति है और जब आप सोने लगे तो पता चले चार चार और आ गए उसमें, तो आपको भी सोचना चाहिए ये बंधु मोहंती की तरह मेरी पिटाई हो रही है ना।
भी क्या बोला है?
बंधु मोहंती की तरह हमारी क्या हो रही है, पिटाई हो रही है।
चार लोग और रूम में,
चार लोग और आ जाए तो हमारे रूम में, तो हमें टेंशन में नहीं आना चाहिए, सोचना चाहिए बंधु मोहंती की तरह हमारी हमारी शुद्धिकरण हो रहा है, हमारी पिटाई हो रही है। ऐसे करके वो उनको कोठरी में डाल दिया गया। रात को जब सो रहा था, पति पत्नी बच्चे बहुत दुखी थे, खाया नहीं, फिर से जगन्नाथ जी आ गए। जगन्नाथ जी कहते, अरे बंधु मोहंती कैसा लग रहा है, ठीक हो? कहा ठीक हो, 56 को खिला करके 108 बार पिटाई कर रही है, 108 बार पिटाई कराते हो आप, कैसे भगवान हो? और ऊपर से मित्रता का दावा करके, मैं तो आपको अपना मित्र समझ के आया था, मुझे यहाँ से मुक्त करिए ना प्रभु। तो कहते चिंता मत करो, जाकर के राजा को स्वप्न में जाकर बोला कि तुमने मेरे मित्र के साथ दुर्व्यवहार किया है ना, उसको कहाँ डाला है, काल कोठरी में डाला है, चलो तुरंत उसको मुक्त करो वरना मैं कल से तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दूंगा। जब ऐसे बोला तो रात ही को राजा दौड़ा दौड़ा आया, सभी पुजारी पंडों को इकट्ठा किया, काल कोठरी में गया, बोला क्या तुमने किसी बंधु मोहंती नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है? कहा हाँ, उसको एकदम ताला डाल के रखा है, चोर है वो। कहा चोर नहीं है, वो चित्त चोर का मित्र है, वो चोर नहीं है। अरे तुमने बहुत बड़ा परेशान कर दिया, मैं रात में स्वप्न में जगन्नाथ आ गए, कल मंदिर श्री मंदिर छोड़ के चले जाएंगे। तुरंत ताला खोला, उसको दंडवत प्रणाम किया, भैया आप बहुत बड़े भक्त हैं, हमसे गलती हो गई, हमारे सिपाहियों को माफ करो, और कहा कि आपके पूरे जीवन काल में जो भी खाने की आवश्यकता होगी वो श्री मंदिर से भिजवाई
जाएगी।
तो इसी जगन्नाथ जाने कब आपकी इच्छा पूरी करने लगे, इसीलिए भगवान कहते हैं ना, योगक क्षेमम वहामि हम, जो आपके पास नहीं है वो मैं प्रदान करता हूँ, जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करता। कैसी भी परिस्थिति आए आनंद में जाइए, आनंद में रहिए, आनंद में जगन्नाथ जी को बोलते रहिए, क्या जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ,
जय जगन्नाथ।
ठीक है, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, हरे हरि बोल।